From the conference center
at Salt Lake Sahar, Temple Square, Kesembalan Kendra, Say, Isi Mistiki, Girjagar, K, Antim Dino, Kesantoka, 180th Varsik, Maha Selen, Hey, Jiske Basin, Karta Girjagar, K, Maha Adikanyo, or Maha Pad Adikanyo, May, Sechune Gay, Hey, or Orem Institute of Religion, Gayak Mandali Dwara, Is Sabaka, Sangit Pradan, Kia Jaga. Bonneville Distribution Dwara is Prasaran Kojanta, Sewa Kerup, May, पूर्ति की गई है इस कार्यक्रम का कोई भी पुनर्पादन अभिलेखन या नहीं मना है डीटा एफ उगडव गिरजाघर के प्रथम अध्यक्षता के दूसरे सलाहकार इस सभा का संचालन करेगा
Our dear brothers and sisters.
भाइयों और बहनों, हम आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह का गिरजाघर अंतिम दिनों के संत का 180th अर्धवार्षिक महासम्मेलन के दूसरे बैठक में प्रधान थॉमस एस मॉन्सन जो इस सभा के अध्यक्षता कर रहे हैं ने कहा कि मैं इस सभा को संचालन करूं। हम उन सभी का स्वागत करते हैं जो उपस्थित है या जो दूरदर्शन रेडियो या इंटरनेट के साधनाओं द्वारा भाग ले रहे हैं और उनका भी जो दुनिया का बिना भागों में स्टेक सेंटरों के देख रहे हैं जहां सैटेलाइट ट्रांसमिशन द्वारा सम्मेलन पहुंचा रहा है रायन एगट और एलन मैथ्यूज के निर्देशन में से इस सभा के संगीत को जो जोरम ओरम इंस्टीट्यूट ऑफ रिलीजन के गायक मंडली द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा जिनके साथ ओरम का बानी गुडलफ होगी इस सभा सभा का शुरुआत गायक मंडली कम लिसन टू द प्रॉफिट वॉइस गाकर करेगी प्रार्थना फिर एल्डरलिन जी रॉबिन्स द्वारा प्रार्थना की जाएगी
Joy.
Our beloved Father in heaven.
Hamare Perempita Parmeshwar.
We are so grateful for this worldwide general conference.
Hum bahut abhari hai is duniya bhar mein jo ye conference ja rahi hai aur jo aashirwad hame mil rahi hai sangeet aur aapke bhavishyavaktaon se. Hum aapko dhanyawad dete hain aur sabhi aashirwad ke liye jo hame milte hain hamare zindagi mein. हम आभारी हैं आपके पवित्र आत्मा जो हम सब की मदद करता है और उनके साथ रहता है जो आज बोलेंगे और कि हमारे हृदय में ये सुसमाचार जाएं और अपनी जिंदगी को बदलें और आपकी आज्ञा का पालन करें. इस आज के दिन हम बहुत आभारी हैं यीशु मसीह के बलिदान के लिए कि हमारे विश्वास उन पर बढ़े और कि हम उनकी रास्ते पर चले. और हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपके सुसमाचार को समझें और कि हम अपने परिवारों में अच्छी तरह से रहे और आपकी आज्ञा को पालन करें और कठिनाइयों से दूर रहे. और इस आशीर्वादों को लिए हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से आमीन.
The choir just sang.
The choir Gaia, I feel my Savior's love. के सेक्रेटरी है 2009 के गिरजाघर के स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट को पेश करेंगे. यह प्रस्तावित किया गया है कि हम थॉमस स्पेंसर मॉन्सन को यीशु मसीह का गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों के भविष्यवक्ता पैगंबर और देवदूत और प्रधान के रूप में समर्थन करें. हेनरी बेनियन एरिन को प्रथम अध्यक्षता का प्रथम सलाहकार और डिएटर फ्रेडरिक हुगडब को प्रथम अध्यक्षता के दूसरे सलाहकार के रूप में समर्थन करें, जो सहमत है वो प्रकट करें, जो असहमत है वो भी प्रकट करें. यह प्रस्तावित किया गया है कि हम बोएड केनेथ पैकर, जो 12 देवदूत की परिषद है, प्रधान के रूप में समर्थन करें. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dylan H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christopherson, or Neil Anderson. Jo sahamat hai, kripya prakat kare. Jo asahamat hai, prakat kare. यह प्रस्तावित किया गया है कि हम प्रथम अध्यक्षता के सलाहकारों और 12 देवदूतों को भविष्यवक्ताओं, पैगंबरों और देवदूतों के रूप में समर्थन करें, जो समाज सभी सहमत है प्रकट करें, जो असहमत है वो भी प्रकट करें. यह प्रस्तावित किया गया है कि हम इन्हें मई 1, 2010 से क्षेत्रीय सत्रों के पालन से मुक्त करें.
Amato, Manuel Arraiz, Jorge de Arrevillaga, Marcelo Bolfarini, Fernando E. Calderon, Gabriel A. Campos, Chu Chen Che, Flavio A. Cooper, Ronaldo da Costa, John C. Dalton, Kevin R. Duncan, Randy D. Funk, Robert H. Garf, Garrett W. Gong, Friedrich J. Gertz, S. Horacio Guzman, Ronald J. Hammond, Stephen W. Hansen, Yu Chen Ho, Patrick Cairn, Christian H. Kleiweg, Larry R. Lawrence, Robert W. Lees, F. René Loli, Juan A. Machuca, Per G. Mom, Carlos S. Obata, Alexander A. Odume, A. Rolando Oyola, Melvin R. Perkins, James C. Perry, John C. Pingree, Dinar M. Rice, D. Chet Richardson, Maury W. Schoaf, Hans T. Sorensen, John C. Taggart, Donald P. Tenney, G. Perrin Walker, Johann A. Vondra, Kazuhiko Yamashita. Those who wish to
उनकी बढ़िया सेवा के लिए जो हमारे आभार को अभिव्यक्त करने की इच्छा रखते हैं तो प्रकट करें. यह प्रस्तावित किया गया है कि हम प्राथमिक की महाअध्यक्षता के बहन शेरल सी लेंथ, मार्गरेट एस लेफर्ट और विकी एफ मात्सुमोरी को मुक्त करें. हम प्राथमिक के जनरल बोर्ड के सदस्यों को भी मुक्त करते हैं. इन बहनों की बढ़िया सेवा के लिए जो हमारे आभार को अभिव्यक्त करने की इच्छा रखते हैं, कृपया प्रकट करें. यह प्रस्तावित किया गया है कि हम केविन आर डंकन, जेरेड डब्ल्यू गॉन्ग, Patrick Kieran, और हुआन ए उसेदा के नया सदस्य बनाए। और दूसरे कोरम 70 के लैरी आर लॉरेंस, पर जी माम और जेरो मगजादी को रखे। जो सहमत है वो प्रकट करे, जो असहमत है वो भी प्रकट करे। यह प्रस्तावित किया गया है कि हम नई इन्हें नए क्षेत्रीय सत्रों में पुष्टि करें।
फिलिप के बुसी, रेने चोटा कैब्रेरा, रेनाटो कैपेलेटी, पॉल डी एम क्रिस्टेंसन, रोजेरियो जी आर क्रूज, डोनाल्ड डी डेशलर, जॉर्ज आर डोनाल्डसन, इनी बी एकोंग, क्रिस्टियन फिंगरले, क्रेग जी फिशर, Gerald L. Garnes, Jack N. Gerard, M. Keith Giddens, Brent J. Hillier, Yui Chang Ruang, George M. Keel, Dane O. Levitt, Alexander T. Mestre, Arayik B. Minasyan, T. Jackson Cabela, S. Gifford Nielsen, Valentin F. Nunez, Jeffrey E. Olson, R. Ingvar Olson, Robert N. Pecker, Nathaniel R. Payne, Cesar A. Perez Jr., Fujar Pierre No, Michael J. Real, Edson D. G. Ribeiro, Brett K. Risenmay, Mozart B. Soares, Carlos A. Solis, Norland de Sosa López, Kusu Tashiro, Omar Villalobos, W. Christopher Waddell, Alan J. Webb, Gerardo J. Wilhelm, Kevin J. Worthen, Greg T. Wright, Jim L. Wright. All in favor, please signify.
जो सहमत है प्रकट करें। कोई असहमत है? यह प्रस्तावित किया गया है कि हम रोजमेरी मिक्स विक्सन को नई प्राथमिक की महाप्रधान, साथ में जीन ऑलरिज स्टीवंस को प्रथम सलाहकार और शेर फे आईसी एस्प्लिन को दूसरे सलाहकार के रूप में समर्थन करें। जो सहमत है कृपया प्रकट करें। कोई असहमत है? यह प्रस्तावित किया गया है कि हम यानी अन्य महाअधिकारियों, क्षेत्रीय सत्रों और महासहायक अध्यक्षों को समर्थन करें। जो सहमत है कृपया प्रकट करें। अगर कोई असहमत है प्रकट करें। प्रधान मानसन, जहां तक मैंने देखा सम्मेलन केंद्र में मतदान सर्वसम्मत रहा उन प्रस्तावों के हित में जो किया गया था। धन्यवाद भाइयों और बहनों तुम्हारे समर्थन मत के लिए, तुम्हारे विश्वास, श्रद्धा और प्रार्थनाओं के लिए। हम आमंत्रित करते हैं जनरल अथॉरिटीज नए प्राथमिक की महाअध्यक्ष को आगे बढ़े और अपने जगह ले मनुष्य पर। इस मिसी का गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों के प्रथम अध्यक्षता के लिए। प्यारे भाइयों, जैसे धर्म सिद्धांत और वादे के भाग 120 में प्रतिकारण द्वारा निर्धारित किया गया है, डिस्पोजिशन ऑफ टाइट्स की परिषद गिरजाघर के धन के खर्च का अधिकार देती है। यह परिषद में शामिल है प्रथम अध्यक्षता, 12 देवताओं की परिषद और अध्यक्ष करने वाले बिशप्रिक। यह प्रसाद गिरजाघर विवाहों और प्रचलाओं की बजटों की अनुमति देती है। गिरजाघर ऑल्टिंग विवाह को अनुमति दी गई उसके पास सभी अभिलेख और प्रणालियों तक की पहुंच जाए जो आवश्यक है ताकि दंत प्राप्ति कर्ज और गिरजाघर की समाप्तियां की सुरक्षा के नियंत्रण को प्राप्त रूप से मूल्यांकन किया गया है। जो ऑडिट हुआ है उस पर आधारित गिरजाघर ऑडिटिंग विभाग का यह विचार है कि 2009 वर्ष के सभी सामान्य योगदान जो प्राप्त हुई जो खर्च हुई और गिरजाघर की समाप्तियों की अभिलिखित किया गया है और उनकी देखभाल उचित अकाउंटिंग अभ्यास स्वीकृत प्राप्त बजट और गिरजाघर नीतियों और कार्यविधियों के अनुसार की गई है। श्रद्धापूर्वक पेश किया गिरजाघर ऑडिट विभाग रॉबर्ट सी कैंटवेल।
The first presidency has issued
प्रथम अध्यक्षता ने दिया गई गिरजाघर के स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट प्रदान की है December 31, 2009 के लिए स्टेक्स 2,865 मिशन्स 344 जुलाई 616 वार्ड और शाखाएं 28,424 गिरजाघर सदस्य पूरे सदस्य 13,824,854 2009 में रिकॉर्ड किए गए नए बच्चे 119,722 नए बपतिस्मा 2009 के दौरान 280,106 प्रचारक समय 51,736 2009 के दौरान संपन्न किए गए मंदिर दो ड्रेपर यूटा और ओका माउंटेन यूटा मंदिर जो संचालन में है 130 महागिरजाघर के अफसर और अन्य लोग जो गुजर गए हैं पिछले अप्रैल के बाद एल्डर रॉयडन जी डेरक एक सेवा मुक्त महाअधिवक्ता 70 के भूतपूर्व सदस्य एल्डर जॉर्ज आई कैनन डब्ल्यू डॉनलड डगलस जे मार्टिन और जोसेफ बी मोरन बहन कॉलिन डब्ल्यू ए सी एल्डर कार्लस ई ए सी की विधवा एक सेवा मुक्त महाम बहन जीन सी डन एल्डर पॉल एच डन की विधवा बहन जेलरी सी सिम्पसन एल्डर रॉबर्ट एल सिम्पसन की सेवा मुक्त महा बहन जैकुलिन डब्ल्यू लॉरेंस एल्डर डब्ल्यू बेक लॉरेंस की पत्नी बहन बेटी एन टर्ली एल्डर रिचर्ड ई टर्ली सीनियर की पत्नी भाई डेविड एस किंग जवान पुरुषों के आपसी सुधार संगठन बहन एन एस रीज सहायक संस्था महाअध्यक्षता के भूतपूर्व सलाहकार भाई रॉबर्ट जे मैथ्यूज बाइबल के जोसेफ स्मिथ अनुवाद के एक अधिकारी और भाई ट्रुमन मैथसन गिरजा अचर का बीवाईयू जेरूसलम सेंटर के भूतपूर्व धन्यवाद भाइयों अब हम एल्डर एल्टम टॉम पेरी और डी टॉड क्रिस्टोफर्सन जो 12 देवदूतों के परिषद के हैं से सुनेंगे।
हाल में मुझे मौका मिला था कि एल्डर हॉलस्ट्रोम के साथ यात्रा करने का पांच शहरों का जो यूनाइटेड स्टेट्स के मुख्य केंद्र भाग में है हर शहर में एक समय एक प्रचारक के साथ सभा करेंगे जिसके बाद हम स्टेक और वार्ड नेताओं के भेंट करने प्रचार करें दोनों सभाओं के बीच में समय में स्टेक के सहायक संस्था के तैयारी की ताकि हमें स्टेक प्रधानों प्रेसिडेंट्स के भेंट कर सके मिले जब हम मिलेंगे विंसो पहुंचे दो जवान परिवारों ने सहायक संस्था के तो हमको खाने को दिया दोनों पति रसोई में काम कर रहे थे दोनों माताएं मेज को सजा और भोजन परोसने के देख रहे थे तीन बच्चे अपने माताओं के निर्देश में मेज पर तैयारी कर रहे थे माताओं के लिए ये एक अवसर बच्चों के सिखलाना का बहुत अच्छा लगता था बच्चों को देखना कि कैसे वो अपने माताओं के द्वारा बताए गए हर एक काम को ध्यान से करते हैं वो अपने दिए गए कार्य को करने में बहुत स्ट्रेस थे। इस अनुभव ने मुझे अपने माता से प्राप्त किए गए पर गौर के निफाई के तरह और आप में से कईयों की तरह मैं एक अच्छी करना। मेरे एक भांजी ने मेरे साथ चार छोटी पुस्तकें बांटी जिसमें मेरे माता द्वारा लिखी गई लेख जब वे रिलीफ सोसाइटी के कक्षा की तैयारी कर रहे थे जिसमें मेरी माता के कई घटनों की तैयारी है। मेरी माता एक बढ़िया शिक्षक थी जो अपनी तैयारी में परेशानी और संपूर्ण थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो दिन उस शिक्षा दिनों के पहले खाना खाने वाले मेज साधारण थे। मुझे ये भी यकीन है कि उसकी कोई भी तैयारी व्यक्त नहीं होती थी। कैसे मैं इसके यकीन कर सकता था? छोटी पुस्तक में पढ़ने से ऐसा लगता कि एक बार फिर मैंने अपनी माता की आवाज़ सुन रहा हूँ मुझे पढ़ाती हुए। फिर उसके छोटी पुस्तकें में एक कक्षा में पढ़ने से कई ज़्यादा प्राप्त हुई मगर जो कक्षा में नहीं इस्तेमाल करती वो अपने बच्चों को सिखाने में इस्तेमाल करती। मैं विश्वास करता हूं कि पहले मेरी माता सहायक संत के बहनों के लिए एक बढ़िया शिक्षक थी। उसके सबसे अच्छा शिक्षा घर में उसके बच्चे के साथ होता था। जरूर ये हो सकता है क्योंकि वो सहायक संस्था के बहनों से ज्यादा समय अपने बच्चों को सिखलाने में समय बिताती थी मगर मैं ऐसा भी सोचना चाहता हूँ कि वो इतनी अच्छी तरह से तैयारी करती थी। पहले तो अपने बच्चों के लिए परेशानी गिरजाघर सेवा के उदाहरण बनाने के लिए और दूसरा क्योंकि उसने समझ लिया था कि जो वो शिक्षा की तैयारी करती थी समय सीखती है बार बार किसी ऊंचे लक्ष्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है उसके पुत्र और पुत्रियों के सिखलन। मुझे आज्ञा दो कुछ क्षणों के लिए स्मरण करें कि इसलिए कुछ शिक्षण बातें जो अपनी माता के से मेरी माता बच्चों को बचपन में ही दर्जा आदर्श और सिद्धांत सिखलाने के समझ देती थी। वो समझती थी कि माता पिता के अपने बच्चों के शिक्षा का जिम्मेदारी दिया गया है और अंत में माता पिता को दिखाना है कि उनके बच्चों को वो सिखलाना जो रहा है जो स्वर्ग पिता चाहता है वो सीखे। मेरे भाइयों बहनों मुझे सावधानी से पूछा जाता हमारी माता द्वारा जब हम घर के बाहर से शिक्षित होकर आते थे ये निश्चय करने के लिए कि सही शिक्षा हमारे कानों तक पहुंच रहा है और हमारे मन को अक्सर आकर दे रहा है। कभी कभी पाठशाला से घर लौटते समय मैं सोचता था कि उस दिन का शिक्षा संपन्न हो गया है मगर ये सोच जल्द दूर हो जाती थी जब मैं अपनी माता को दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतजार करता था। वहाँ एक परिस्थितिक शिक्षा थी और हमसे ज्यादा मांग करती हमारी पाठशाला और गिरजाघर के शिक्षाओं के मिलान में। मेरी माता के शिक्षा में दोनों विश्वास और आत्मिक पाठ शामिल थे। वे देखती थी कि हम में से कोई भी अपने पाठशाला के काम में पीछे नहीं है जिसके लिए वो हमें घर पर आभास देती थी। वो अपने सहायक संस्था के पाठ का अभ्यास भी हमारे साथ करती। हमें उसके पास ही पूरे भाग मिलता था ना ही वो संस्पित भाग हो एक कक्षा में आत्मा हो था। हमारे घर के शिक्षा में धर्मशास्त्र को याद करना भी था विश्वास के लेख और भवश्विकता देवदूत और दिव्य ज्ञान प्राप्त। मेरे माता ऐसी थी जो विश्वास करती थी कि मन कमजोर हो जाता है अगर उससे लगातार इस्तेमाल ना कर जब हम बातों दूर रहे थे मकान निकल रही विकार के सोच को अपने बच्चों के मन के दाखिल नहीं होने देता चाहती उस समय भी जब वो शारीरिक कार्य भी करती थी। मैं आज की दुनिया के माताओं पिताओं को जगह पर अपनी माताओं के आदेश के रूप में रखता हूँ। कई गतिविधियाँ एक पीढ़ी के आदर्श को दूर से जोड़ती है, मगर शायद इन गतिविधियों में मुख्य है घर में माताओं पिताओं से बच्चों को शिक्षा। ये खासकर सच है कि जब हम आदर्शों नेताओं चित्र के स्तर और विश्वास में सोचते हैं। घर में शिक्षा करने आज की दुनिया में ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है, जहां शैतान का प्रभाव इतना फैला हुआ है और वो समझ के नेव माताओं पिताओं को स्थिरता से निर्णय करना है कि घर में शिक्षा एक बहुत पवित्रता और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जबकि अन्य संस्थाओं जैसा गिरजाघर और पाठशाला माता पिताओं को सहायता दे सकती है। लड़के को शिक्षा उसकी मार्ग से स्वर्ग पिता के बच्चों के देखरेख और विश्वास का ध्यान रखना है। हमारे परिवार उनके लक्ष्य और महिमा का जरूरी भाग है। परमेश्वर के अंत योजना में माताओं पिताओं के आशा की जादी है कि वो अपने बच्चों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। सौभाग्य से अन्य लोग उनके जीवन में शामिल हैं, जो सहायता देंगे जब माता पिता नहीं कर सकते। हल्कानी वो माताओं पिता हैं जिन्हें प्रभु द्वारा आज्ञा दिया गया है अपने को रोशनी और सच्चाई से पालने के लिए। माता पिताओं अपने घरों में रोशनी और सच्चाई ला सकते हैं। पारिवारिक प्रार्थना एक धर्मशास्त्र अध्ययन के समय पारिवारिक शाम सभा एक किताब जो बधा गया एक गीत और एक पवित्र भोजन का समय द्वारा वह जानते हैं कि धार्मिक आत्मिक अतल दैनिक माता पिता का देख रह गया प्रभाव दुनिया के सबसे शक्तिशाली और बने रखवाली शक्तिशाल है। माताओं पिताओं का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को यीशु मसीह के सुसमाचार के बचाने वाले सिद्धांत सिखाए, ताकि वे जाने, क्योंकि उन्होंने कहा बपतिस्मा लेने हैं और अपने हृदय में इच्छा उत्पन्न करना है चलने बपतिस्मा के बाद भी, ताकि वे उनके उपस्थिति में वापस लौट सके। क्या आप मेरे अच्छे भाइयों और बहनों अपने परिवार अपने बच्चे को चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि आप अपने पत्नियों को अपने माताओं के साथ रखें जो आपसे पहले जी रहे थे? अगर ऐसा है तो तुम्हें ज्ञान देना चूले जो शुरू करना होगा, तुम्हें उदाहरण और उपदेश से सिखलाना होगा। मेरे माता का उदाहरण घर में एक शिक्षा के रूप में एक और विचार हो अमृत करता है जिंदा शिक्षा में। क्यों हम इतना समय और प्यास लगाते हैं? क्योंकि हम विश्वास करते हैं सिखलाने के उस बेहतरीन शक्ति पर। मेरा विश्वास है कि सबसे चीज है हम सबसे गिरजाघर में शिक्षा को सुधारन के लिए कि हम घर में शिक्षा को सुधारें। घर में हमारा शिक्षा हमें तैयार कर सकता है गिरजाघर में अच्छी तरह सिखलाने के लिए। गिरजाघर भर में खाने के मेज है जिस पर संदर्भ की किताबों और छोटे लेख की पुस्तकें भरी है, पाठ के लिए टिप्पणियों से भरी जिससे सिखलाना है। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम यीशु मसीह की समाचार को पढ़ने के लिए ज्यादा तैयारी कर लें, क्योंकि सुसमाचार की झलकियां चाहे वो कक्षा के समय इस्तेमाल की जाए वो हमेशा घर में सिखाई जा सकती है। वो प्रेरित लेख परिवार तुम दुनिया में समाचार की एक घोषणा। पति और पत्नी के पास पवित्र जिम्मेदारी है कि प्यार करने के एक दूसरे के देखभाल के और उनके बच्चे के लिए। बच्चों ईश्वर के विरासत है। माता पिता के पास पवित्र कर्तव्य है अपने बच्चों के परवरिश करने प्यार और ईमानदारी से, उनके शारीरिक और आत्मिक जरूरतों के लिए प्रदान करने, उनके सिखलाने, एक दूसरे से प्यार करने और एक दूसरे से सेवा करने के लिए। ईश्वर की योजना द्वारा पिता अपने परिवार में प्यार और ईमानदारी से आदर्श करने और अपने परिवार के जीवन के आवश्यक चीजों को प्रदान करने और उनकी रक्षा करने के लिए जिम्मेदारी है। माताओं खासकर बच्चों के पालन पोषण के लिए जिम्मेदारी रहती है। इन पवित्र जिम्मेदारी में पिता और माता एक दूसरे की मदद करते हैं। बराबर के जिम्मेदारी है दोनों की। परिवार दुनिया में सुसमाचार के एक घोषणा एक अनुसार जो सिद्धांत आती है का कर्तव्य है, मगर वो जरूरी है कि एक माता के किरदार के लिए। पिता अक्सर अपने दिन का ज्यादा समय घर से दूर बिताते हैं। ये ही एक कारण है कि बच्चे एक शिक्षा के ज्यादा जिम्मेदारी माताओं को दिया जाता है, जबकि अलग होती है हमेशा की एक चीज संभव नहीं होती है। हम आज इतनी सारी चेतावनियों देखते हैं जो ध्यान भाग करने वाली और विनाशक प्रभावों से आती है परमेश्वर के बच्चों को बहकाने के लिए। हम इतनी सारे जवान लोगों को देखते हैं जिनमें उनमें घेरे आत्मिक जादाओं के कमी है। हमारे स्वर्ग पिता के बहुत के बच्चे दुनिया के इच्छाओं के वास में हो रहे हैं। अचानक ही हमारे बच्चों के विरोध बुरे कामों का आक्रम पहले से हो जाती है। यीशु मसीह का सुसमाचार घर पर सिखलाना थोड़ा और दूसरे उत्पन्न करते जिसे दुनिया के प्रभाव से हमारे बच्चों का सुरक्षित रखा जा सकता है। परमेश्वर तुम्हें जो जाए उनके परेशानियों माताओं पिताओं को आशीर्वाद दे, उसमें अपने आनंद बच्चों को तुम्हारी रखवाली में सौंपना है। माता पिता के रूप में हम सचदार होते हैं परमेश्वर के साथ जोड़कर उसके कार्य को महिमा को उसके बच्चों को मात करते हैं। उसके कार्य हमारी मैं इसकी गवाही देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
On October 6, 1536 में बेल्जियम ब्रसेल्स के करीब विलवोद्रे कासल के तहखाने से एक बेचारा व्यक्ति को ले गया। लगभग एक और आधा साल तक वो व्यक्ति अकेले एक अंधेरे कुछ भीगे से सेल में तड़पता। अब महल के दीवार के बाहर उस व्यक्ति को जमीन में लगे खड़े खंबे से बांध दिया गया। उसके पास समय था अपने आखिरी प्रार्थना को जोर से बोलने का, प्रभु इंग्लैंड के राज्य को आंखों खोलो, और फिर उसके गले को दबाकर मार दिया गया। तुरंत उसके शरीर को खंबे पर ही ले चला गया। यह व्यक्ति कौन था और उसका जुर्म क्या था जिसके लिए दोनों राजनीतिक और धार्मिक अधिकारियों ने उसे ज्यादा सजा दिया? उसका नाम विलियम टैंडल था और उसका जुर्म था बाइबल को अंग्रेजी में अनुवाद करना और छापना। टैंडल का जन्म इंग्लैंड में हुआ जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका के लिए प्रस्थान किया था। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के विश्वविद्यालयों में उसने शिक्षा हासिल किया था। ग्रीक और हिब्रू लैटिन के साथ वो अन्य पांच भाषाओं के आसानी से जानता था। टैंडल ने वादा किया, अगर परमेश्वर मेरी जिंदगी को बख्श दे, मैं उस प्लव चलाने वाले लड़के को पब से भी ज्यादा धर्मशास्त्र का ज्ञान दूंगा। उन्होंने गिरजाघर के अधिकारियों से बाइबल को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए स्वीकृति ली ताकि सभी परमेश्वर के वचन को पढ़े और प्रयोग कर सके। 1524 में वो जर्मनी गया एक झूठे नाम से, जहां वो रहा काफी समय तक पढ़ते जानकर के डर से। वचनबद्ध मित्रों के मदद से टैंडल नया नियम के अंग्रेजी अनुवाद को छाप सका और आगे चलकर पुराना नियम भी। धर्मशास्त्रों को इंग्लैंड में चुपके से बेचा गया, जहां पर बहुत आवश्यकता थी और उन लोगों ने बहुत पैसा दिए जो उसे चाहते थे। वो भारी संख्या में बट गए, मगर छुपाकर अधिकारियों ने सारे कॉपीज को जला दिया जो उन्हें मिल सके। फिर भी टेंडल का कार्य धर्मशास्त्र से लगभग सभी आने वाले अंग्रेजी अनुवाद का नीच बना, खासकर किंग्स जेम्स वर्जन में। विलियम टिंडल का बलिदान कई देशों और भाषाओं के लोगों में से पहला या आखिरी नहीं था। मरते दम तक भी परमेश्वर के शब्दों को अंधकार में से निकालने के लिए हम सबको धन्यवाद का कर्ज अदा करना है। शायद हम उन सब के और भी ज्यादा अभी आभारी हैं जिन्होंने विश्वास से लिखा और कई सालों से इतिहास से शब्दों को बचाया, अक्सर पीड़ा भरे परिश्रम से और बलिदान से। मोसेस, आजाया, इब्राहिम, जॉन पॉल, नीफाई, मॉर्मन, जोसेफ स्मिथ और कई अन्य लोगों ने वो धर्मशास्त्र के मूल्य के बारे में क्या जानते थे जो हमें भी जानना जरूरी है। क्या 16 सदी इंग्लैंड के लोग जिन्होंने बहुत रकमन के पैसे भरे और अपने ऊपर गंभीरता से व्यक्तिगत कर्तव्य को अपनाया बाइबल को, उसके मरने के से कुछ ही पहले भविष्यवक्ता अल्मा ने अपने पुत्र हिलमन को पवित्र जानकारियां मनुष्य के बारे में सौंपा। उसने हिलमन को याद दिलाया कि धर्मशास्त्रों ने इन लोगों के ज्ञान को पढ़ाया है, इनकी भूलों का इन्हें विश्वास कार्य और परमेश्वर की जानकारी करने का साथ इनकी आत्माओं को मुक्ति दिलाई है। उसने हिलमन को आदेश दिया कि वो लेखा को सुरक्षित रखे ताकि परमेश्वर भविष्य के पीढ़ियों को अपनी शक्ति दिखला सके। धर्मशास्त्र के द्वारा परमेश्वर अपने बच्चों को बचाने और अनंतता दिलाने में अपनी शक्ति को दिखलाता है। धर्मशास्त्र हमारे ज्ञान को बढ़ाता है। वो हमें हमारे मरणशील जीवन से पूर्व की बातें याद दिलाती है और वो हमारे ज्ञान को दूसरे भाव से बढ़ाते हैं, जिससे युगों, मनुष्य और घटनाओं से विषय में पढ़ाने से जो हमने व्यक्तिगत रूप से अनुभव नहीं किया। हम में से कोई भी लाल समुद्र के अलग होते समय मोसेस जल के दीवार के बीच में से चल कर दूसरी ओर जाते समय मौजूद नहीं था। हम उसके उपदेश को सुनने के लिए, लाजरस को मृत्यु से जिंदा होते देखने के लिए, गेतसेमनी में उद्धारकर्ता को पीड़ित देखने के लिए क्रूस पर चढ़ने के समय, और हमने मेरी को साथ दो स्वर्ग को खाली गुफे में यीशु के मृत्यु के से जिंदगी की गवाही देते नहीं सुना। धर्मशास्त्र हमारे ज्ञान को बढ़ाती है, हमें सहायता करने के से इसकी हम ना भूले क्या हम और हमारे पूर्वज ने सीखा है। जिनके पास चाहे नहीं हो या वो परमेश्वर के लिखे गए वचन को नजरअंदाज कर दिए और अंत में उसमें विश्वास करने लगे और अपने जीवित रहने के महत्व को भूल जाते हैं। तुम्हें ये याद होगा कि लिहाई के लोगों ने के लिए कितना जरूरी था कि वे अपने साथ ब्रास प्लेट को ले जा सके। ये धर्मशास्त्र परमेश्वर के एक ज्ञान के लिए अनिवार्य थे और मसीह के आने वाली मुक्ति के लिए। टाइनडेल के दिनों में धर्मशास्त्र संबंधी त्याग मौजूद था क्योंकि लोगों के पास बाइबल नहीं था, विशेषकर उस भाषा में जिससे वो समझते थे। आज बाइबल और दूसरे धर्मशास्त्र आसानी से उपलब्ध है, फिर भी यहाँ पर धर्मशास्त्र पढ़ने वाले लोग कम हो रहे हैं क्योंकि लोग किताबों को खोलते नहीं। फल स्वरूप वो उन चीज को भूल गए हैं जो उनके अपने माताओं के माता पिता जानते थे। परमेश्वर धर्मशास्त्र इस्तेमाल करता है बुरे सोच, झूठे परंपरा और पाप और उसके प्रभावशाली परिणामों को ठीक करने के लिए। वो एक नरम दिल पिता है जो हमें हर मुसीबतों और दुख से बचाएगा और उसी समय हमें मदद करेगा हमारे दिव्य क्षमता को हासिल करने में, एल्मा जिसने कोई और के साथ सौदा किया था ने अपने खुद के पुत्र को नहीं छोड़ा। कोरिएंटर अनिश्चिंता की स्थिति में सच्चाई और राजी होती है दिव्य नीति नियम पर। कोरिएंटर यो संबंधी पाप का दोषी हुआ और उसके पिता ने उसे प्यार से बातें की मगर सरलता से। मेरे बेटे, क्या तुम नहीं जानते कि इस तरह के कर्म प्रभु के लिए धर्मपूर्ण हैं? हाँ, ये केवल निर्दोष के रक्त बनाने और पवित्र आत्मा को स्वीकार करने को छोड़कर सबसे अधिक धर्मपूर्ण कर्म है। मनुष्य ने जो सोचा था एक सदी पहले, कई आज एल्मा के साथ विरोध करेंगे। अनैतिकता की गंभीरता पर और बाकी बहस करने की, वो सब जुड़ा हुआ है या परमेश्वर का प्यार अनुमत है। अगर परमेश्वर है, वो कहता है, वो हमारे सभी पापों और बुरे कर्मों को नजरअंदाज कर देता है क्योंकि वो हमें प्यार करता है। पश्चाताप की कोई जरूरत नहीं, या तो फिर एक साधारण स्वीकृति चल जाएगी, मगर एक प्यार का परमेश्वर हमें उदास अनुभव से सीखने नहीं देता क्योंकि पाप कभी भी आनंद देव नहीं था। उसकी आज्ञाई आदेश की आवाज है और हमारी सुरक्षा खुद की पीड़ा से। धर्मशास्त्र साफ तौर से बताता है कि सच्चाई खुशी परमेश्वर के नए को ठुकराने से नहीं मिलती या पाप के परिणामों से प्रजित होने की कोशिश करने से, मगर पश्चाताप में और माफी द्वारा परमेश्वर के पुत्र के प्रायश्चित की दया से। धर्मशास्त्र हमें सिखलाता है सिद्धांत और नैतिक आदर्श जो नागरिक संताओं को बरकरार रखने के लिए जरूरी है, जिसमें शामिल है सत्यनिष्ठा, जिम्मेदारी, खुद को भूल जाना, वफादारी और दयालुता। हम धर्मशास्त्र में पाते हैं धुंधली चित्रा आशीर्वाद के मिलता है सही सिद्धांत को मानने से, में वो भी दुख जो आती है जब लोग और सभ्यता उसे नहीं मानते, चाहे वो पुराने रोम, नए अमेरिका या कहीं और भी हो। जहां धर्मशास्त्र संबंधी सच्चाई को नजरअंदाज किया जाता है या छोड़ दिया जाता है, समझ की जरूरी नायत अंश पूर्ण होने से पहले कर्म होता है और अंत करीब होता है। समय में उन संस्थाओं को बनाए रखने के लिए कुछ नहीं बचता जो समझ को कायम रखती है। अंत में धर्मशास्त्र की जरूरी वजह है कि वो हमारी आत्मा को परमेश्वर जो पिता है और उसके पुत्र यीशु मसीह के विश्वास से भर कर देगा। परमेश्वर का वचन, जैसा अल्मा ने कहा, हमारे दिलों में एक बीज की तरह है और ये विश्वास जैसे बढ़ती है जब हम धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं, दूसरों के विश्वास भरे आत्मिक अनुभव हमारे अपने विश्वास को मजबूत बनाती है। हम उस मनुष्य के विश्वास को याद करते हैं जो यीशु को बिना देखे अपने सेवक को ठीक करने दिया और एक जेंटाइल स्त्री के बेटी को ठीक करना, क्योंकि उस विनम्रता माँ स्वीकार करती जैसे भी था उनके स्वामी के मेज से गिरा हुआ भोजन का टुकड़ा भी। हम जोब का पीड़ा से रोने की आवाज को सुन सकते हैं, वो मुझे मार डालेगा फिर भी मैं उसी पर विश्वास करूंगा, क्योंकि वो यीशु के सिद्धांत को विस्तार से बताते हैं। धर्मशास्त्र के साथ पवित्र आत्मा है जिसका कार्य है पिता और पुत्र की गवाही देना। इसलिए धर्मशास्त्र एक तरीका है जिससे हम पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये सही है, शुरुआत से ही धर्मशास्त्र पवित्र आत्मा से ही मिलती है और वो ही आत्मा तुम्हें और मुझे अपनी सच्चाई से दे सकता है। धर्मशास्त्र को सावधानी से ठीक से पढ़िए, उस पर सोचे और प्रार्थना उसे सोचे और प्रार्थना करें। धर्मशास्त्र में प्रकट होने की क्रिया है और वो उसमें और भी प्रकट होने की क्रिया को शामिल करेगा। हमारे आशीर्वाद की महानता को जानिए जिससे हमें पवित्र धर्मशास्त्र और कुछ 900 अन्य धर्मशास्त्र के पन्नों को, जिसमें शामिल है मोर्मन धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र और वादे और अनमोल मोती, फिर उसे जानिए और उसके अलावा भविष्यवक्ता के वचन को पवित्र आत्मा से प्रेरित होने पर मिलती है जिससे प्रभु धर्मशास्त्र कहते हैं। हमारे पास हर वक्त पहुंचते हैं टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, सैटेलाइट, सीडी, डीवीडी और लिखित रूप में। मैं ये जानता हूं कि कभी इतिहास में मनुष्यों को इतना आशीर्वाद इतनी सारी धर्मशास्त्र से नहीं मिली, और सिर्फ इतना ही नहीं मगर सभी आदमी, औरत और बच्चा ने अपने व्यक्तिगत पवित्र किताबों के कॉपी से पढ़ा और सीखा होगा, सभी अपने भाषा में। कितना तजुब लगा ऐसी चीज विलियम टेंडल की दिनों के लोगों के पहले की युगों के संतों को। आशीर्वाद के निश्चित रूप से ईश्वर हमें ये बात ला रहा है कि हमें धर्मशास्त्र की इस्तेमाल की ज्यादा जरूरत है इस समय पर। हमें मसीह के वचन को पर भोज हमेशा करना चाहिए जो हमें बतलाएगा कि हमें क्या कर सकते हैं। मैंने इस धर्मशास्त्र को पढ़ा और इस पर सोचा है और इस ईस्टर समय में पिता और पुत्र की गवाही देता हूँ। धर्मशास्त्र में प्रकट किया गया था यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
गायक मंडली और शबाब साथ मिलकर गाएगी, वी थैंक दी ओ गॉड फॉर प्रॉफिट। गीत के समाप्ति पर एल्डर कियोची ओयागी और ब्रूस ए कार्लसन, जो 70 के हैं, हम से बात करेंगे। उनके टिप्पणियों के बाद हम एल्डर डेविड ए बेडनर और 12 के पश्चात के हैं से सुनेंगे।
This is the 180th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Thank you.
Mere pyare bhai aur behno, main is sammelan mein bhashan dene ke mauke ke liye bahut abhari hu. Main pradhan Thomas S. Monson ke liye abhari hu aur gawahi deta hu ki wo jeevit prabhu ka pavis vakta hai. Main pradhan Monson ke udharan se bahut prasan hu jinhone apna jeevan bita diya auron ki sahayata aur unhone bachane mein apne haathon ka prayog karne se. Hum us aise dino mein rehte hain jahan ki takleefon saman kar rahi hai aur zaruratmand ho gayi hai bhukamp tsunami anandi aur any prakrit vipatan ke sarvanashi prabhav ke karan. वो एक एक तरह से सहयोगी हाथ बढ़ाते हैं प्रभु के तरीके से. वो प्रभु के आज्ञा का पालन करते हैं सभी अवसरों पर. गरीब और जरूरतमंद और बीमार और पीड़ित लोगों के याद करने के लिए, क्योंकि अगर हम ये सब ना करें हम उनके चेला नहीं है. आज मैं उन हाथों पर गौर करना चाहता हूँ जो सहयोग देते और बचते हैं आत्मिक रूप से. प्रभु का कार्य और महिमा सच में मनुष्य का आवरण शलता और आनंद जीवन देना है. कई लोग हमारे आसपास आत्मिक सहयोग चाहते हैं, जैसे हम बचने के लिए हाथ को बढ़ाते हैं कम सक्रिय सदस्यों को की ओर. आधे सदस्य के परिवारों और जो हमारे विश्वास के नहीं, हम सभी को आमंत्रित करते हैं मसीह के करीब आने के लिए. गिरजे के नए प्रवृत्त सदस्य के हैसियत से मैंने एक आत्मिक बचाव अनुभव किया गिरजाघर के एक विश्वासी सदस्य के बचने वाले हाथों से. जब मैं 17 वर्ष का था, मैं दो अमेरिकी प्रचारकों से मिला, एल्डर कार्टर और एल्डर हयाशी. वो परेशानी, हंसमुख और प्यार और रोशनी से भरे थे. मैं उनके गुणों से बहुत प्रसन्न हुआ और मैं उनके जैसा बनना चाहता था. मैंने उनके संदेश को सुना और बपतिस्मा लेना चाहता था. मेरे माता पिता जो बुद्धिस्ट थे ने मेरे बपतिस्मा का विरोध किया. प्रचारकों और प्रभु के सहायता से मुझे आज्ञा मिली चमत्कारी ढंग से और मैंने बपतिस्मा लिया. अगले वर्ष में योकोहामा के विश्वविद्यालय में दाखिल लिया. अकेले रहने पर और अपने घरेलू सहार और जाने माने लोगों से दूर मैंने अकेला हो गया. एक दिन मुझे एक पोस्टकार्ड मिला एक गिरजाघर सदस्य से जो वहां घर पर था. उसने लिखा कि उसे खबर मिली थी कि मैं गिरजाघर सभाओं में नहीं भाग ले रहा है. उसने एक धर्मशास्त्र का भाग लिखा. मैं धर्मशास्त्र के उस भाग से खुश हुआ. इसे मुझे याद आया कि मैंने कुछ आवश्यक चीज को खो दिया है और मैंने कई दिनों तक सोचा और संघर्ष किया. इसे मुझके एक वादक भी याद आया जो प्रचारकारों ने मुझसे किया था. अगर तुम मोमन धर्मशास्त्र पढ़ोगे और तुम सच्चे हृदय, अच्छी अभिलाषा और मसीह में विश्वास से प्रार्थना करोगे कि मरोनाई ने दिया गया वादा सच्ची है. मैंने जाना कि मैं अपने पूरे हृदय से प्रार्थना नहीं कर रहा था और मैंने ऐसा करने का निर्णय लिया. एक सुबह मैं जल्द जग गया. अपने छोटे से अपार्टमेंट में घुटनों पर होकर पूरे हृदय से प्रार्थना किया. मेरे आश्चर्य पर वादा अनुसार पवित्र आत्मा की पुष्टि मेरे ऊपर आई. मेरे हृदय जल सा रहा था, मेरा शरीर हिल गया और मुझे आनंद मिला। पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा मैंने सीखा कि परमेश्वर जो पिता है और उनका पुत्र यीशु मसीह जीवित है और कि वो सच में जोसेफ स्मिथ को देखे थे। मैंने अपने हृदय में एक प्रतिनिवेद बनाया करने और विश्वास से यीशु मसीह का आज्ञा पालन करने का अपनी बाकी की जिंदगी। इस आत्मिक अनुभव ने मेरा जीवन पूरी तरह बदल दिया था। प्रभु को और गिरजाघर सदस्य को अपना कृतज्ञ दिखाने के लिए जिसने मुझे बचाया था। मेरे मिशन के बाद मैं मंदिर में एक अच्छी लड़की के साथ सील हो गया और मैंने 4 बच्चों का आशीर्वाद मिला। ये वही लड़की है जिसने मुझे उस अकेले अपार्टमेंट को योकोहामा में था कई वर्ष पहले एक पोस्टकार्ड भेजा। मैं कोई हुई भेड़ की तरह भागता हूँ तो अपने दास को ढूंढ लें क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को भूल नहीं गया। मैं प्रभु के लिए दया के लिए हमेशा आभारी रहूँगा और इस गिरजाघर सदस्य के लिए।
I reflect on the bishop who often visited.
वो अक्सर अभ्यंत करती है और कई विश्वासों का सही लोगों के विश्वास को मजबूत किया है। मैं एक पुरोहित नेता को जानता हूँ जो इस उस जवान आदमी के साथ समय बिताता है जिसने अपना पिता खो गया है। एक और परिवार सुसमाचार बनते हैं, आनंद मानता है। माता पिता और बच्चे सभी सुसमाचार की गवाही देते हैं। अपने उस पास के लोगों को और सभी उसे प्यार करते हैं। एक प्राथमिक की गतिविधि का भाग होने के कारण मेरी 5 वर्षीय नतीन ने एक पॉपकॉर्न का बीज एक शेष के बोतल में डालती है। हर बार वो एक अच्छाई करता है। भविष्यवक्ता की सुनो, वो रास्ता जानता है। मेरे पास समय नहीं तुम्हें सभी अच्छे चीजों के बारे में बताने के लिए जो गिरजाघर सदस्य करते हैं। वो भविष्यवक्ता का सलाह मानते हैं किसी फर्ज या जिम्मेदारी का कारण नहीं मगर अपने खुद ही इच्छा से आनंद और खुशी से। कभी कभी हम कमजोर महसूस करते हैं और दूसरों के बचाने के लिए बल कम होता है मगर प्रभु हमें याद दिलाता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे ही साथ किया। मैं प्रधान थॉमस एस मनसन के दोहराने के साथ समाप्त करता हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, हम उनसे घिरे हैं जो हमारा ध्यान, हमारा प्रोत्साहन, हमारा सहयोग, हमारा सहानुभूति, हमारा दया चाहते हैं। चाहे वो परिवार, सदस्य, दोस्त, जाने वाले या अजनबी हो, हम इस धरती पर प्रभु के हाथ है उनके बच्चों की सेवा करने और उन्हें आगे बढ़ाने के आज्ञा के साथ वो हम सब पर निर्भर है। हम भविष्यवक्ता के सलाह और उदाहरण का पालन करें और हर दिन उन्हें ढूंढें जो जरूरतमंद है कि हम प्रभु के हाथ बने उनके बच्चों को सहयोग देने और बचाने के लिए। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन।
एक कहानी है दो भारी मनोरंजन पसंद करने वालों की जिन्होंने एक छोटा विमान बड़े पर लिए थे। उन्होंने दूर के झील के जाने के लिए उन्होंने वश मछली मारने की यात्रा के लिए एक कामयाब यात्रा के बाद वो विमान चालक उस पास लौटे उन्हें स्मरण करने हालांकि उन्होंने जल्द ही मछुआरों के बतला कि उसके छोटे विमान उनको नहीं संभाल पाएगी। उसकी दूसरी उड़ान की जरूरत हो सकती है। वो खिलाती उस दूसरी वाली यात्रा पर पैसा देने के लिए राजी नहीं होता। हालांकि जाए कि विमान के खो दिए छेल झील और किनारे पर फ्लैट डाल स्थान पर और धमाके से गिर पड़ा। विमान ने नियंत्रण को खो दिया जब वे एक जाने माने हकीकत जिसे ये जब धरती के करीब से उड़ सकते हैं ये जब धरती के करीब से उड़ सकते हैं ये जब धरती के करीब से उड़ता तब वो जाता है। क्या हुआ? दूसरे ने जवाब दिया, उड़ान बढ़ते समय पर धमाका से गिरा। लगभग 1,000 कज दूर जहाँ पर हम उन दोनों मछुआओं की तरह हम विश्वास करते हैं कि वहाँ पर सरल रास्ते हो गए, एक छोटा रास्ता या प्रभु की आज्ञा संतों के हमारे प्रति ऐसा विचार नाकामयाब हो जाते हैं। ईश्वर के नियमों को सही तरीके पालन करने से जो आशीर्वाद को है आ जाते उनके नियमों को नहीं मान देना। गिरजाघर के प्रधान नियुक्त के समय हेरल बिल्ली ने कहा, गिरजाघर के रक्षा आता है जब सदस्य नियमों के पालन करते हैं, जब वे नियमों के पालन नहीं करते आशीर्वाद मिलेगी। जब हम एक आज्ञा का पालन नहीं करने को चुनते हैं जिम्मेदारी वो कारण होता है। हमें अपने आप को मानना लिया है कि हमेशा तुलना है। दूसरा, हम नहीं विश्वास करते हैं। तीसरा, हम निश्चित होते हैं कि ये आज्ञा पालन करना बहुत कठिन है। पहला, राजा सोलमन के राज के संपत्ति वर्षों में भविष्यवक्ता उसके सूचित किया, मैं तुमसे राज्य 3 लोगों से तुम्हारे नौकरों को दूंगा। कुछ दिन वक्ता अयोजा ने सेवा की। चेरबोम की काम था कि एफ्रेम के पहेदी की देश को जाएं, जहां वो रहता उनके यात्रा के दौरान भविष्यवक्ता ने उससे भविष्यवाणी किया कि रास्ते में मिलकर मैं आपको 10 टुकड़ा दूंगा। वो जरूर भी शिक्षा दिया और मेरे मांगों पर चले, मेरे विद्या और आज्ञा मानते रहो। आयजा के भविष्यवाणी सुनने के बाद में सोलमन जेरबम से दूर गया और उनके इजिप्ट मैन के जबरदस्ती से भेज दिया। सोलमन के मृत्यु के बाद जेरबम इजिप्ट के लौट आया और ट्राइब्स को लगा। हालांकि जेरबम की हरकत था वो राज्य को अच्छाई और बुराई से हुकूमत करे, मगर दुखी से वो शैतान जैसा रीति की भक्ति किया। जेरबम ने अपने आप को यकीन दिलाया कि कई ईश्वर के आज्ञा पर लागू नहीं थे। उसके संघर्ष की नेताजी से उसकी सारी औलादों की मृत्यु हो गई और बुरे दुष्ट पवित्र आत्मा भी चले गए। जैसे धरती के करीब में उड़ा और बाहर के 7 ज्यादा वजन जो विमान के पाने उड़ सके नष्ट हो गया, हमारी या ईश्वर के नियम में कुछ चुनने हुए नियमों को पालन करने हमें पूरे आशीर्वाद नहीं देगा। दशक बाद नमंग ये शिरन युद्धवीर एक महान आदमी जो बहादुर है यात्रा कर रहा था अपने मूलवासी गांव से जुड़ा तक और राजा जेरम के समीप गया खुद लिप्रसी से चंगाई पाने के लिए। नामन को प्रॉफेट इलाइशा के पास गया और इलाइशा ने उसके पास दिया कि तुम 7 बार जॉर्डन में जाओ और पानी में से निकलो, तुम साफ हो जाओ। परंतु चंगाई पाने के पवित्र वचन के वह नमन क्रोध हुआ क्योंकि इलाइशा ने उसको लेप्रेसी के स्वागत नहीं किया और उसका ज्यादा क्रोध हुआ। उसकी घमंड कुछ ज्यादा मांगते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण और महान था। सौभाग्य से नौमन के नौकरों ने उनको यकीन दिलाया कि जहाँ जो कुछ भी भविष्यता ने उसको प्रभु की आशीर्वाद। नौमन जोर्डन रिवा में धोया और वो उसको आशीर्वाद मिला और उसको लेप्रोसी से चंगाई। प्रभु का आज्ञा पालन करने से चाहे जितना छोटा हमसे होने को विश्वास करें, जरूर उसका वादा किया जाएगा। तीसरा, ये बहुत कठिन है। प्रभु की आज्ञा से पालन करने से प्रोफेट लिहाई ने अपने परिवार के जंगल में लेके गया और अपने बेटे लेमल लिमल को बताया कि मजबूती से रहो। फिर भी जब भविष्यता की आज्ञा आया कि जेरूशलम को लौटे, तब ब्रास पतियाओं के पुनस्थापित करने पे दो बड़े बेटे ने कहा, नेफे की विश्वास और प्रभाव की आज्ञा पालन करने से उन्होंने ब्रास की पत्तियों को हासिल किया, एक देश बनाया और भाष बनाया, सुसमाचार सिखलाया गया सभी को। कभी कभी हम सोचते हैं कि प्रभु हमें समझ लेगा, हम आज्ञाओं का उल्लंघन करेंगे क्योंकि हमारे विदेश प्रस्थ है। चाहे जितने भी बड़ी कार्य हो, ईश्वर के मार्गदर्शन, सहारा और शांति को लेना चाहिए। भविष्यवक्ता जोस स्मिथ ने प्रभु को आवेदन किया उन दो समय पर, एक दोस्त मार्टिन हैरिस, अगर वो पहले 116 पन्नों को अनुवाद किया गया हुआ चीज को से लिखिए जो बुक ऑफ लियाई के था, हमने पेंसिल्वेनिया से पेलमारा तक वापस लिया। मार्टिन अनुवादों के हुए हस्पात को ढूंढ रहा था ताकि उनके उसे गवाही की तरह इस्तेमाल करके अपने सेवकों को उसके बारे में अफवाह फैला सके। तीसरे निवेदन पर प्रभु ने जोसेफ से अनुवाद को स्वीकार किया। मार्टिन ने हस्तपी खो दिया और उसके परिणाम से पट्टियों को भविष्यता जोसेफ स्मिथ के लिए गया, कुछ ज्यादा के लिए। ये नियम हमारा होना चाहिए था। प्रभु के जवाब जरूर आता है कि अगर जो हम आज्ञा का पालन करें, उन्होंने वादा किया अगर तो तुम मेरी आज्ञा का पालन करो तो तुमको अनंत जीवन मिलेगा। मैं ईश्वर क्षमाशील और दयावान हूँ, जो मुझसे डरता है और खुश होता है उनसे मेरी सेवा करते हैं धर्म के लिए। प्रभु की आज्ञा करने से हमें भरोसा मिलती है और हमारे रास्ते में उसकी रक्षा और रास्ते पर जब हम अपने बनाते हैं पिता के पास लौट सकते हैं। ये मेरा प्रार्थना है कि एक दिन हम अपने आप को ज्यादा आज्ञा का पालन करें और मैं कोशिश करें यीशु मसीह के सुसमाचार के धर्म रीति को पालन करें। मैं गवाही देता हूँ कि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से स्वर्ग की आशीर्वाद मिलेगी। यीशु मसीह जीवित है कि मोमन धर्मशास्त्र प्रभु की शब्द है और कि प्रेजेंट थॉमस एस्मंसन हमारा ये प्रोफेट है आज दिन के। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
Recently,
हाल में मैं अपनी कार चला रहा था जब एक गरज तूफान के पानी के बूंदे विंडशील पर पड़ी। रास्ते के किनारे एक इलेक्ट्रिक साइन में एक उचित चेतावनी थी, रुका हुआ पानी आगे। जिस फर्श पर मैं जा रहा था दिखने में सुरक्षित लगता था, मगर इस खास जानकारी ने मुझे मौका दिया आने वाले खतरे से बचने को, जिसकी मैंने कामना नहीं की और ना देख सकता था। जैसे मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया, मैंने रफ्तार धीमी की और मैंने खतरे के साइन पर निगरान दी। जल्द की चेतावनी के सिग्नल हमारे जीवन के कई पहलुओं पर मौजूद है। उदाहरण ले, एक बुखार बीमारी या रोग का लक्षण हो सकता है। कुछ वेद संबंध और लेबर मार्केट संकेतक का इस्तेमाल किया जाता है और मैं अवलांच तूफान जवार बाटा बाउंडर या बफाल दी की चौतानी मिल सकता है। हमें आत्मिक जल्द की चौतानी के सिग्नल से आशीर्वाद मिलता है, सुरक्षा की स्रोत से और जीवन में निर्देशन से। याद कीजिए कैसे नोवा जो आगाह किया गया था परमेश्वर द्वारा अंत की बातों पर। लिहाई को चेतावनी दी गई थी कि वो अपने परिवार को जेरूशलम से लेकर जंगल में चले जाए, क्योंकि जिन लोगों को तुमने पश्चाताप का संदेश दिया था वो तुम्हारा जान लेना पर उतार है। उद्धारकर्ता खुद एक दुख दूत के चेतावनी से बचाता। देखो प्रभु के एक दूत में सपने में जोसेफ का दिखाई दे करा कहा। प्रभु के भाषा पर ध्यान देना जो ज्ञान के शब्द के प्रतिकारण में दिया गया था, जिसमें प्रभु संतों का बताता है कि क्योंकि इतनी बुराई और योजनाएं जो अब मौजूद है और वो बुरे आदमियों का दिलों में रंगनी आत्मिन दिनों में, उसमें हमें पहले से चेतावनी दिया गया के शब्द पर पेश करके आत्मिक चेतावनियां हमें और भी चौंकाना करती है। तुम और मैं चेतावनी के एक दिन में जी रहे हैं, और क्योंकि हमें चेतावनी दी गई है और दी जाएगी, हमें जरूरत है जैसे देवदूत पॉल ने सलाह की दी, लगातार निगरानी में रहे। मैं पवित्र आत्मा के निर्देशन की विनती करता हूँ। जब मैं एक आत्मिक जल चेतावनी वाले व्यवस्था का बारे में बताऊँ जो जायन में माता पिताओं की सहायता करेगी अपने बचाव के विषय में निगरानी देने और समझने में। पहला, मोमन धर्मशास्त्र को पढ़ना और उसके विषय में अपने बच्चों से बातें करना, सुसमाचार की सच्चाइयों पर सरलता से गवाही देना, और तीसरा, बच्चों को सुसमाचार पर कार्य करने का और न सिर्फ काम में आने का निमंत्रण देना। माता पिता जो ये सब विश्वास के करते हैं को आशीर्वाद मिलेंगे अपने बच्चों में आत्मिक बढ़ती के जल्द की सिग्नल या चौतानियों के पहचाने और अच्छी तरह तैयार रहने प्रेरणा हासिल करने में। मोमन धर्मशास्त्र में उद्धारकर्ता के सुसमाचार की संपूर्ण है ये, और यही है एक पुस्तक है जिसमें प्रभु ने खुद उसकी सच्चाई की गवाही दी। वास्तव में मोमन धर्मशास्त्र हमारे धर्म का मूल तत्व है। मोमन धर्मशास्त्र की राजी कराने और बढ़ाने की शक्ति इस बात से आती है कि वो प्रभु यीशु मसीह पर गौर करता है और उसकी प्रेरित शिक्षा से जो सरल और स्पष्ट है। निफाई ने कहा, सरल बोलने से मेरी आत्मा आनंदित होती है क्योंकि इसे मेरी लोग सीख सकते हैं। मोमन धर्मशास्त्र इस धरती के सभी पुस्तकों में से सबसे सही पुस्तक है क्योंकि वो सच्चाई पर गौर करती है यीशु मसीह पर भी, और वो उन सरल और अमोल बातों को वापस लाता है जो सच्चे सुसमाचार से निकल गया था। इन दो बातों का निराला संगठन उदारकर्ता पर दयान और शिक्षण की सरलता शक्ति से ईश्वरत्व के तीसरे सदस्य को आनंत्रित करता है, पवित्र आत्मा को भी। फलस्वरूप मोमन धर्मशास्त्र पढ़ने वाले की आत्मा और दिल तक पहुंचाता है जो कोई और धर्मशास्त्र नहीं कर सकता। भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ ने सिखलाया कि मोमन धर्मशास्त्र में पाया जाने वाले उद्देश्य पर चलने से हम ईश्वर के और करीब आएंगे किसी और पुस्तक के मिलान में। जब हम मोमन धर्मशास्त्र को लगातार पढ़ेंगे और उस पर चर्चा करेंगे, हमारे पास ज्यादा शक्ति होगी बकावे और रोकने के लिए और हमारे परिवार में प्रेम की। और मोमन धर्मशास्त्र में दिए गए धर्म सिद्धांत और सिद्धांत के विषय में चर्चा मौके प्रदान करती है। माता पिताओं को अपने बच्चों पर निगरानी रखने, उन्हें सुनने की। सभी उम्र के युवा शिशु भी मोमन धर्मशास्त्र के विशिष्ट आत्मा को महसूस करती और पहचान सकती है। बच्चे शायद सभी शब्दों और कहानियों को नहीं समझ पाए, मगर वो जरूर उस जान पहचाने आत्मा के महसूस कर पाएंगे जिसका वर्णन ऐसा निका। और वो सवाल एक बच्चा पूछता है, जिन स्त्रियों को वो बनता है और वो बातचीत होती है, जरूरी आत्मा जल्द की चेतावनी के सिग्नल्स प्रदान करती है। यह अवश्य क्या है कि ऐसी बातचीत माता पिता को मदद करती है जाने जीने के लिए कि उनके बच्चे क्या सीखते सोचते और महसूस करते हैं। Bearing testimony spontaneously. गवाही व्यक्तिगत ज्ञान है जो पवित्र आत्मा का गवाही पर आधारित है कि अनंत महत्व का कुछ तो बातें हैं सच्चे हैं। पवित्र आत्मा और पुत्र का संदेश देने वाला है और सभी सच्चाई का शिक्षक और मार्गदर्शक है। इस प्रकार पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा सब बातों की सच्चाई जानोगे। वो ज्ञान और आत्मिक विश्वास जो हमें पवित्र आत्मा का प्राप्त होती है प्रतिकारण का परिणाम है। एक व्यक्तिगत गवाही से हमें जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व मिलता है। माता पिता जो को सावधान और आत्मिक रूप से चौंकाना रहना चाहिए, मौके पर सरलता से गवाही देने के लिए अपने बच्चों से। ऐसा अवसर पहले से तय नहीं किया जाता या लिखा जाता। वास्तव में जितना कम कारक ऐसे बयान हो उतना ज्यादा संभावना है उन पर। उदाहरण के तौर पर एक आम परिवार बातचीत रात्रि के भोजन के समय एक अच्छा समय होगा कि माता या पिता को उस दिन बाहर के गतिविधियों को पूरा करने में जो खास आशीष मिला को याद करने और ऊपर गवाही देने के लिए। मैं आपसे अपना गवाही बांध रहा हूँ। हमारी गवाही इस सरलता से भी दी जा सकती है। मैं जानता हूँ कि मुझे काम पर प्रेरणा का आशीर्वाद मिला था या इस धर्मशास्त्र में दी गई सच्चाई मेरे लिए हमेशा निर्देशन के एक शक्तिशाली जरिया रहा है। गवाही पेश करने के इस तरह का मौके साथ कार के बस में सफर करते समय या कई अन्य जगहों पर प्राप्त हो सकते हैं। बच्चों की प्रतिक्रिया ऐसी अचानक की गवाही सुनकर और उनकी उत्सुकता या अनिच्छा भाग लेने में अच्छा स्रोत है जल्द की आत्मिक चेतावनी के सिग्नल जानने के लिए। माता पिता को मदद करता है बच्चे की सवाल या जरूरत का अच्छी तरह समझने में। ऐसा बातचीत खासकर जब माता पिता तैयार रहते हैं बच्चों को सुनने के लिए जो जब वो बात कर रहे हैं। घर पर ध्यान देने वाला और सुरक्षित माहौल कायम करने सकता है और कठिन विषयों पर लगातार चर्चा को बढ़ावा देता है। कंपोनेंट 3, इनवाइटिंग चिल्ड्रन टू एक्ट। परमेश्वर की रचनाओं के सभी भागों में कर्म में आने और कार्य करने वाली वस्तुएं भी है। स्वर्ग पिता की बच्चों के रूप में है नैतिक चुनाव का ऊपर का आशीर्वाद मिला है, खुद के कार्य करने की क्षमता और शक्ति। चुनाव का दान पाकर हम अभिकर्ता हो गई है, खासकर जब हम शिक्षा ध्यान द्वारा ढूंढते हैं और विश्वास से भी। सुसमाचार के विद्यार्थी के रूप में हमें वचन पर चलने वाला बनना है और केवल सुनने वाले नहीं, हमारे दिल पवित्र आत्मा की प्रभाव के लिए खुले हैं जब हम अपनी चुनाव करने की शक्ति का अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं। माता पिताओं का पास पवित्र जिम्मेदारी है बच्चों को कार्य करने और विश्वास से सिख प्राप्त करने। और एक बच्चा कभी बहुत छोटा नहीं होता इस तरह शिक्षा प्राप्त करने की योजना में भाग लेने के लिए। एक आदमी को एक मछली देना उसके एक समय की भोजन खिलाता है। एक आदमी को मछली मारना सिखलाना उससे एक अरसे तक खिला सकता है। माता पिता और सुसमाचार शिक्षक के रूप में तुम्हें और मुझे मछली नहीं बांटना है, बल्कि हमारा काम है अपने बच्चों को सिखलाना कैसे मछली मारे और आत्मिक रूप से अटल रहे। इस महत्वपूर्ण लक्ष्य पर हम पहुंच सकते हैं जब हम अपने बच्चों को प्रोत्साहित करने सही सिद्धांतों के अनुसार चलने के लिए, जब हम उनकी सहायता करने कार्य करने से सीखें तो सीखें को ऐसा शिक्षा के लिए आवश्यक है आत्मिक मानसिक और शारीरिक दबाव। बच्चों को सुस्मिता सीखने के लिए आमंत्रित करना कार्य करने और ना सिर्फ काम में आने के लिए से घर में मोहम्मद धर्मशास्त्र पढ़ने और उस पर चर्चा करने और सरलता से गवाही देने में बढ़ती लाती है। धर्मशास्त्र में जो वो पर और सीख रहे हैं या किसी विषय ऐसे विषय पर सुसमाचार अध्ययन पर सरल गवाही का दौरान घर में की गई है। और ये भी कल्पना करें कि बच्चे ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका जवाब देने के लिए माता पिता पर्याप्त रूप से तैयार नहीं है। कुछ माता पिता चिंतित होते हैं कि इस तरह से शाम सभा करने में, मगर सबसे बेहतर पारिवारिक शाम सभा केवल पहले से तैयार की गई, खरीदी गई या डाउनलोडेड की गई चित्रों का उत्पादन नहीं होता। परिवार सदस्यों के लिए कितना विश्वास मौका है साथ मिलकर धर्मशास्त्र अध्ययन करने का, अध्ययन और विश्वास से सिख ढूंढने का और पवित्र आत्मा द्वारा सिख पाने का, क्योंकि प्रचारक श्रोताओं से श्रेष्ठ नहीं होते और न ही शिक्षक सीखने वाले से अच्छे होते हैं। क्या तुम और मैं अपने बच्चों की मदद कर रहे हैं अभिकर्ता बनने के लिए जो कार्य करते हैं और सीखते ढूंढते हैं, या हमने बच्चों को सिखलाया है सीख पाने के लिए? और क्या हम माता पिता के रूप में अपने बच्चों को आत्मिक मछली के जैसी भोजन देते हैं? क्या हम अपने बच्चों की मदद कर रहे हैं लगातार मांगने ढूंढने और खटखटाने के लिए? जिस आत्मिक समझ का हमें आशीर्वाद मिला है और जैसे हमारे दिलों में सच की पुष्टि की गई है, हमारे बच्चों को नहीं दिया जा सकता है। परिश्रमी होने का और अध्ययन और विश्वास से सीखने का शिक्षण का पैसा भरा जाना चाहिए, ऐसा ज्ञान पाने और व्यक्तिगत रूप से अपने के लिए। सिर्फ इस तरह से जो मैं मन में है और दिल में भी महसूस की जा सकती है, सिर्फ इस तरह एक बच्चा माता पिता और आत्मिक ज्ञान और अनुभव और निर्भर नहीं रहता पर अपने लिए आशीर्वाद ले लेता है। सिर्फ इस तरह हमारे बच्चे मरणशीलता के चौताइयों को लिए आत्मिक रूप से तैयार रह सकते हैं। वादा और गवाही। मैं गवाही देता हूं कि जो माता पिता लगातार मोमन धर्म शास्त्र को पढ़ते और उसके विषय में अपने बच्चों से बातें करते हैं, जो अपनी गवाही सरलता से अपने बच्चों के साथ बनते हैं और जो बच्चों को सुसमाचार सीखने के कार्य करने न कि सिर्फ काम में आने के लिए आमंत्रित करते हैं, को आशीर्वाद मिलेगा जो दृष्टि का जो दूर देख सके और नर्सिंग की आवाज सुने लायक कान का, वो आत्मिक समझ और प्रेरणा जो तुम्हें मिलेगी इन तीन पवित्र आदत को करने से तुम्हें केल पर परदार की तरह खड़े होने देगा अपने परिवारों के लिए लगातार। अपने परिवार मैं इसका वादा करता हूँ और गवाही देता हूँ प्रभु के नाम से, आमीन।
Thank you, brethren.
महापुरोहित सभा के भाइयों को याद दिलाता है कि सम्मेलन केंद्र मैं ये शाम 6 बजे माउंटेन डेलाइट समय शुरू होगी। देशभर का त्यौहार कल गायक पंडली का प्रसारण कल सुबह 9:30 से 10 a.m. तक माउंटेन डेलाइट टाइम समय होगा। सम्मेलन की रविवार सुबह के सभा उसके बाद होगी। हम ओरम इंस्टीट्यूट ऑफ रिलीजन गायक पंडली और सुंदर को सुंदर संगीत के लिए धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने आज शाम प्रदान किया। इस सभा के हमारे अंतिम भाषणकर्ता होंगे 12 देवताओं की परिषद के जेफरी आर हॉलैंड। उनके भाषण के बाद गायक मंडली गाएगी नियरर माय गॉड टू दी। गाने के समाप्ति पर सत्र के एल्डर क्रेग सी क्रिस्टेंसन द्वारा प्रार्थना की जाएगी।
जैसे सिस्टर हॉलनर में एक दूर के हवाई अड्डे पर उतरे, तीन खूबसूरत जवान महिलाएं जो उसी फ्लाइट में थी उत्सुकता से आए हमारे स्वागत करने के लिए आए। उन्होंने अपने आप को गिरजा के सदस्य के रूप में पहचान करवाया, जो उतनी अचंभव थी कि बात नहीं थी कि क्यों कि जो लोग गिरजा के सदस्य नहीं हैं वो उत्साहकता से हवाई अड्डे पर हमारे पास नहीं आते। एक बातचीत के द्वारा किसकी हमने प्रश्न नहीं किया, हमने ये जाना कि उन तीनों की आंसुओं से कि वो औरतें का हाल में तलाक हुआ था। हर एक मामले में उनके पति गहरे भरोसेमंद थे और हर एक मामले में अलग रहने और अपराध का शुरुआत में हुआ था जब आशील चित्र से आश्रित हुए। मेरे आज के संदेश का इस बेरुखे पर प्रवेश से मैं पुराने जैकब की तरह महसूस कर रहा हूं, जिसने कहा मुझे कष्ट हो रहा है कि तुम से संबंधित हो बातों को मैं निवर्तन पूर्वक जिनमें से बहुतों की भविष्यवाणी के समक्ष अत्यंत कोमल और सतीस्तवमय है, मगर हमें साहसी रहना चाहिए। मगर यकीन मैं अपने ही सवाल का जवाब जानता था। ज्यादातर दिनों में हम अपने आप को पाते हैं किसी तरह के अनुचित संदेशों से हमला किया जाता हम पर जो अधिक श्रृंखला में हर कोने से आती है। चित्र, टेलीविजन, संगीत उद्योग की अंधेर दलदल की तरफ बढ़ती जाती है और समझ को साथ अप्रिय भाषा और यौन संबंधी दूरिवर्षण से भरती जा रही है। दुख पूर्णता से वही कंप्यूटर और इंटरनेट सेवा जो मुझे मौका देती है मेरा पारिवारिक इतिहास और मंदिर कार्य के लिए नाम तैयार करने में बिना काबू करने से सधान और बिना रुकवाओं के मेरा बच्चों का मेरे पोता पोती को सस्व गोलबल घंटे प्रतिरूप और गंदे जानकारी से उनके दिमाग को बर्बाद करेंगे सदा के लिए। याद कीजिए कि उन जवान पत्नियों ने कहा कि उनके पति ने विश्वासघात शुरू किया था आशील चित्र से आकर्षित होने से, मगर अश्लीलता ग्रीवित सिर्फ आदमी के। लेकिन आपको ये जानना है कि चैट रूम से और इंटरनेट से जो ये बुरी चीजें आप तक पहुंचती है, अगर हम रुकते हैं इस समय कि शाखा को कांटे में और ज्यादा से पेड़ की जड़ पर सीधा आक्रमण करते हैं, आश्चर्य की बात नहीं है कि हम पाएंगे कि कमुकता इस समस्या का जड़ है। कमुकता, लस्ट, अच्छा शब्द नहीं है और निसंदेह एक अच्छा विषय नहीं है चर्चा के लिए, मगर एक अच्छा कारण है कि क्यों है परंपरा में इसे सात गंभीर पापों में से सबसे गंभीर जाना जाता है। क्यों कामुकता एक गंभीर पाप है? तब हमारी जीव आत्मा को चोट पहुंचते हैं कि साथ वो आत्मा को पूरी तरह से भगा देगा। मैं सोचता हूं कि ये पाप है क्योंकि वो सबसे महान रिश्ता जो परमेश्वर मरणशील जीवन में देता है को अपवित्र करता है। वो प्यार को एक पुरुष और स्त्री के एक दूसरे से करते हैं और वो इच्छा को एक दंपति को बच्चों को लाने का एक परिवार में हमेशा के लिए साथ रहेंगे। किसी ने कहा सच्चा प्यार में शामिल होने चाहिए हमेशा के लिए का समझ। सच्चा प्यार अंत तक झेलेगा, मगर कमुकता हाल ही से बदल जाता है, जैसे कि वो एक अश्लील चित्र का पन्ना उलटता है। ये देखते हैं कि एक दूसरे के कमुकता की नज़र से देखते हैं दूसरे पुरुष या स्त्री। सच्चा प्यार के लिए हम चाहते हैं कि बहुत उज्जती हो, जैसे कि मैं बहन होलन के लिए हूँ। हम चिल्लाते हैं घर के ऊपर से, मगर कमुकता शर्म और गुप्ती से जुड़ता है और एक ऐसा बात है जिससे हम सबसे छुपाना चाहते हैं। जैसे जितना देर तक हम अंधेरा हो समय उतना ही अच्छा एक कस के बंद या दरवाजे के साथ अगर कुछ हुआ। प्यार हमें खुद ईश्वर और दूसरों तक पहुंचाने में मदद करता है। कमुकता दूसरी और पार वो कभी भी ईश्वरीय नहीं होता और अपने ईश्वरीय में मानती है। प्यार हमारे अंदर दयालुता और उसका स्वीकार उत्पन्न करता है। कामुकता सिर्फ भूख से आती है। ये कुछ ही वजह है कि प्यार के सच्चे मतलब को भांग करना चाहे कल्पना से ऐसे और के साथ वो भरोसा के नींव को कमजोर करते हैं जिस पर वर्तमान या भविष्य का प्यार बनता है और बहुत ही लंबा समय लगता है फिर से उस भरोसे को बनाने में जब वो भरोसा खो जाता है। अगर ये समस्या बढ़ जाए चाहे वो एक परिवार सदस्य की तरह व्यक्तिगत हो या चुने हुए ऑफिशियल्स, व्यस्त के नेताओं, मीडिया के स्टार्स और खेलकूद संबंधी हीरोज तरह पब्लिक, और वो एक इमारत जो बनाया गया जाती है ताकि वो संभालेगा एक नियुक्ति जिम्मेदारी वाले समझ को खाली हो जाएगा। चाहे हम वही विवाहित या अविवाहित हो, जवान या बूढ़े, और हम बातें करते हैं कुछ चंद के लिए कि कैसा हम बेकाओं से सुरक्षित रह सकते हैं कि किसी भी रूप में वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। हम समझ के सभी बीमारियों समाज के सभी बीमारियों को ठीक नहीं कर सकते, मगर आओ हम बातें करें क्या कुछ व्यक्तिगत कर्म हो सकते हैं। सबसे आवश्यकता अपने आप लोगों से, वस्तुओं से और परिस्थितियों से जो तुम्हें चोट पहुंचाती हैं, और कृपया तब तक बेकावे के साथ स्थल से भाग रहे हो उसे अपना नया पता नहीं जानने दे। कबूले कि जो लोग विनाशक आदतों या लतों के जंजीर से बंधे हैं अक्सर खुद के सहत्य से ज्यादा भारी सहत्य चाहते हैं, और इसमें शायद तुम शामिल हो। अपने बिशप से बात कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि एंजल्स आपकी मदद करें। कंप्यूटर में फिल्टर्स लगाइए कि वो सब बुरी चीजें आप तक नहीं पहुंचे। अगर एक टीवी संचालन अशिष्ट है उसे बंद करिए। अगर एक चलचित्र असभ्य है बाहर जाइए। अगर कोई अनचित रिश्ता बढ़ाता है अलग हो जाइए। कई ऐसे प्रभाव ज़्यादा बुरे नहीं होते मगर वो हमारे फैसले को धुंधला कर सकते हैं, हमारी धार्मिकता को हल्का कर देंगे और बुरा को प्रभावित कर सकते हैं। एक पुराना कहावत कहता है कि हजार मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है, इसलिए अपनी कदम को ध्यान से रखना। जैसा रात को चोर आता है, ऊंचाहे ख्याल कभी कभी हमारे मन में अचानक आ जाती है मगर उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोलना है, इसके लिए मेहमान नवाजी नहीं करना है और उसे नहीं बताना कहाँ सभी कीमती सामान रखे हैं। उसे आप फेंक दीजिए और एक से ज्यादा व्यक्ति पाप या मूर्खता से बच गया, अपने माता अपने पिता पत्नी या अपने बच्चे का चेहरा याद करके जो उसके लौटने का इंतजार करते हैं घर पर। जो भी तुम्हारे ख्याल हो तय कर लें कि वो सिर्फ निमंत्रण द्वारा ही स्वागत है तुम्हारे दिल में। एक पुराने भविष्यवक्ता ने कभी कहा है, अपने आत्मा शक्ति को अपने बुरे ख्यालों के प्रेरणा से विजय पाने दे। विकसित करना और रहो जहां प्रभु की आत्मा है। याद रखिए कि वो तुम्हारा घर या अपार्टमेंट हो दिखलाएगा कि कौन सी कला संगीत और साहित्य तुम्हारे पास है। अगर तुम एंडाओ हो चुके हो, अक्सर मंदिर जाए जैसे तुम्हारी परिस्थिति अनुमति दे। याद कीजिए कि मंदिर तुम्हें तैयार करता है कि एक औजार की तरह परमेश्वर की शक्ति से अपनी महिमा तुम्हारे इर्गिर्द फैलाता है और अपने फरिश्तों को तुम्हारे देखरेख का अयत करता है। और जब तुम मंदिर में से निकलो, याद कीजिए वो प्रति जो तुमने अपने साथ लेते हो, कभी नहीं अलग करना या भूलना। कई लोग जब मुश्किल में हो जाते हैं पढ़ते हैं, मैं क्या सोच रहा था, पर जो कुछ वो सोच रहे थे वो मसीह के बारे में नहीं सोच रहे थे। जबकि उनके गिरजाघर के सदस्य होने के नाते हम वादा करते हैं अपने जीवन के हर रविवार को कि हम अपने ऊपर मसीह का नाम लेंगे और वादा है हर समय उनको याद करेंगे। आओ हम थोड़ा और परिश्रम करें और उनको याद रखें, खास करके इसलिए क्योंकि उसने हमारे रोगों को से लिया है और हमारे ही दुखों को उठा लिया है। उसे हमारे ही अपराधों के लिए घायल किया है कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चेंज हो जाएंगे। हमारे कर्मों पर इसका बढ़िया असर पढ़ना चाहिए अगर हम याद करें कि जब हम बुरा करते हैं हम सिर्फ अपने प्रियजनों को नहीं दुख पहुंचाते पर उन्हें भी दुख पहुंचाते हैं जो हमसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। मगर अगर हम पाप करते हैं, चाहे जितना भी गंभीर हो वो पाप, हम उसी राजसी प्राणी द्वारा बच जाते हैं। वो जो इकलौता नाम है स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया जाता। भाइयों और बहनों, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। प्रधान मोनसन और अन्य भाई तुमसे प्रेम करता है और ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारे
on me. Brothers and sisters, I love you.
और ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है तुमसे प्रेम करता है। मैंने यहाँ प्रेम पर बातें करने की कोशिश की है, इसके प्रति समान और उसका ठीक अब अभिनय मनुष्य के इतिहास के नैतिक समाजों में मैंने बोलना चाहा है प्रेम की पवित्र पर एक विवाहित पुरुष और महिला के बीच और उन परिवारों में जो प्रेम से ही बना है। स्वतंत्रता प्रेम का विश्वरूप दयालुता मनुष्य के आश्चर्य में मसीह पर इशारा करता जो स्वतंत्रता प्रेम हमें मिलता है खुद मसीह के कृपा द्वारा। मैंने अविश्वक्ता से शैतान के बारे में कहा है वो जो बुरा है झूठ और कामुकता का पिता जो कुछ भी करेगा अपनी बस में इसकी झूठ नकल करके सच्चे प्यार को झूठा या नष्ट करने के लिए जहां भी वो उसे देखें और मैंने उसकी इच्छा बतलाई है हमें नाश करने में प्यार को भाग करने के लिए समय अगर वो कर पाए। जब हम अपने समय में ऐसे बेखाओं का सामना करते हैं हमें घोषणा करना चाहिए जैसे छोटे निफाय ने अपनी घोषणा में बतलाया अब अपने आत्मा के शत्रु को स्थान नहीं दूंगा। हम शैतान को मना कर सकते हैं अगर हम उसे चाहते हैं दिल से और गहराई से उस शत्रु को रोक सकते हैं और डांट सकेंगे प्रभु यीशु मसीह की मुक्ति दिलाने की शक्ति द्वारा। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उनकी आनंद सुषमाचार की रोशनी फिर से रोशन हो सकती है और होगी जहाँ तुम डर रहे थे कि जवान निराशा से और लाचारी से अंधेरे में जाएंगे। हम खुशहाली प्राप्त करेंगे विश्वासी रहने से अपने सबसे ऊंची और उत्तम चरित्र के गुण हमारे हो जैसे हम अपने प्यार और अपने विवाहों हमारी समाज और हमारे आत्मा को उतना शुद्ध रखे जितना परमेश्वर चाहता है। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
eternal Father in heaven.
हे हमारे स्वर्ग पिता, हम आभारी हैं जो हमको ये आज वाणी मिली है और जो हमने महसूस किया है और जो पवित्र परिवार है और माता और पिता और बच्चे जो हम हमारे हृदय में जो दिलासा है और जो पवित्र और सुसमाचार की हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रॉफिट्स के लिए जो आज्ञा हमको दिया है. आज हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमको आशीष दें ताकि जब हम इस वाणी को याद करें ताकि हम विश्वास के साथ हमारी आत्मा बढ़े और हम इसको कार्य में लगाएं जो हमने सुना और महसूस किया. हम आभारी हैं इस समय के लिए जो आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के लिए जो उद्धारकर्ता है. हम आभारी हैं जो पुनस्थापित सुसमाचार के लिए इस दिन में और जो आशीष और जो प्रिस्टुड शक्ति के द्वारा ने आपने हम लोगों को सहायता दिया है. हमें आशीष दे ताकि हम आभारी रहे जो कुछ आपने हमें दिया है और आपके कार्य में करें आपके राह पे चले. ये सब हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से. आमीन.
This has been a broadcast of the 180th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by a combined choir from the Orem Institute of Religion. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.